الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ ہماری کلاس امور خانداری میں حسن انتظام سے متعلق ہوتی ہے، اور اس میں نیند کا نظام یعنی سلیپ مینجمنٹ کا موضوع ہم پڑھ رہے ہیں. پچھلے ہفتے جو کلاس ہوئی تھی اس میں کمرے کو مناسب ٹھنڈا رکھے، سونے سے پہلے سکرین کا کوئی کام نہ کرے، سونے سے پہلے سٹریس ختم کر کے سوئے، یہ سب جو ہم نے باتیں پڑھی تھیں وہ سلیپ ڈس آرڈر سے متعلق تھیں. سلیپ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایسا ماحول بنانا جو کہ سلیپ کے یعنی سونے کے موافق ہو، ٹھیک ہے، یعنی سونے کے لیے مناسب ماحول ہو، ایسا بنانا. تو اس کو پڑھ کر کے اب آگے پیج نمبر 173 جو کہ آپ کے سامنے ڈسپلیڈ بھی ہے اسکرین کے اوپر، تو اس پہ اگلا عنوان ہے نیند کا قدرتی پروگرام، اللہ کا بنایا ہوا پروگرام نیند کا نا. تو وہی تو ہم قرآن مجید کے آیت میں بھی پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی وہ ڈھانک لیتا ہے انسان کے تمام معاملات کو، جس طرح سے رات کا اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے تو لباس بھی ڈھانپ لیتا ہے، اندھیرا بھی اسی طریقے سے ڈھانپ لیتا ہے. اور دوسری جگہ پر یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا، کہ ہم نے تمہاری نیند ہے نا تو اس کو قطع کر دینے والی چیز بنایا، کہ تمہارے معاملات کو قطع کر دیتا ہے. تو بھئی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر جو پروگرام ہے انسانیت کے لیے وہ بتا دیا ہے، اب ہمارا کام ہے اس کو فالو کرنا یا فالو کرنے کی حد المقدور کوشش کرنا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہماری باڈی کو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دو ٹائم کا پروگرام دے دیا ہے. دو ٹائم کا پروگرام کیا مطلب؟ کہ ایک رات کو 2 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک، یہ ایسا ٹائم ہے کہ باڈی خود بخود سوتی ہے. 2 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، یہ باڈی یعنی فورسفلی جو ہے نا وہ سوتی ہے، چاہے کوئی جاگنے کی بھی کوشش کرے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رات کو ڈرائیونگ کریں گے، وہ باقی حصہ تو ڈرائیونگ کر لیتے ہیں، لیکن جو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، یہ جسم میں ایسا پروگرام ہوتا ہے کہ انسان کھلی آنکھوں سو جاتا ہے. کھلی آنکھوں سو جاتا کا مطلب یہ ہے کہ دماغ اس کا جو ہے نا وہ سو جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کی آنکھیں کھلی بھی ہوں، لیکن یہ ایک محاورہ ہے. ویسے تو دماغ جب سو جاتا ہے تو آنکھیں بھی بند ہو ہی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ کسی طرح فورس کر کے اپنے آنکھوں کو کھول کے بھی رکھے نا تو بھی وہ فنکشن نہیں کر پاتا، صحیح سے جو ہے نا وہ سوچ نہیں پاتا، صحیح سے دیکھ نہیں پاتا، اگرچہ کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو اسی کو کھلی آنکھوں سو جانا کہا. اسی لیے رات کو جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ 2 اور 4 کے درمیان سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے نا 2 بجے سے لے کر کے 4 بجے کا ٹائم، یہ انسان کو یعنی یہ سخت نیند کا ٹائم ہوتا ہے. تو اور دوسرا ایک ٹائم کیا ہے؟ وہ ہے دوسرا دن میں 1 سے لے کر 3 بجے کا وقت. یہ بھی انسان کے جسم میں بلٹ ان پروگرام ہے کہ انسان کو نیند اس وقت آتی ہی ہے. اچھا، یہ تو ہم جو لکھا ہوا ہے نا ابھی اس کو پڑھ رہے ہیں خالی، یہ بھی انسان کے جسم میں بلٹ ان پروگرام ہے کہ انسان کو نیند اس وقت آتی ہی ہے. کب؟ دوپہر दोपहर को 1 से लेकर 3 बजे का वक्त, तो इस वक्त को नबी अलैहिस्सलाम इस टाइम के अंदर जो है ना वो पावर नैप, वो कैलूला, तो ये सुन्नत बना दिया। चुनाचे जो लोग रातों को इबादत करते हैं उनको चाहिए कि वो रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, मगर 2 से लेकर 4 बजे तक दोबारा सोएं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो है ना ये शुरू होती है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या शुरू होती है कि आप किसी चीज का जो है ना वो एक रुख तो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी का दूसरा रुख नहीं देख रहे। ठीक है, तो जब आप किसी पिक्चर का एक रुख देखते हैं और दूसरा रुख नहीं देखते हैं तो फिर वो तो वन डायमेंशनल मामला हुआ ना। ठीक है, एक डायमेंशन हुई ना खाली एक चीज की। तो भाई दुनिया के में जो अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई है ये वन डायमेंशनल तो नहीं है, ये यक रुखी दुनिया तो नहीं है, इसमें तो हर चीज के जो है वो मल्टीपल डायमेंशन होते हैं ना। तो अगर आप कोई सफा भी रखें, सफा भी लें पेज, ठीक है, तो उस पेज के भी जो है ना वो दो डायरेक्शंस तो कम से कम होंगे ना। पेज की मिसाल क्यों दी, क्योंकि जो सफा होता है, वर्क जो होता है वो बहुत बारीक होता है, पतला होता है, तो उसकी तीसरी डायमेंशन जो है ना वो आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो इतना थिन होता है ना। ठीक है, तो उसको अगर आपको देखना होगा तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप लगाना होगा, माइक्रोस्कोप यूज करना होगा, तो फिर उससे जो है ना वो जो सफा है उसका तीसरा रुख भी आपको नजर आ सकेगा। ठीक है ना, अगर आपने सामने उठाए ना कोई सफा कागज, कागज कोई आपके सामने पड़ा है, ठीक है, उस कागज को उठाएं तो उसका एक रुख देखें, फिर उसको पलटें उसका दूसरा रुख देखें, ठीक है, फिर अब उसकी तीसरा रुख देखने की कोशिश करें, तीसरा रुख आप नहीं देख सकेंगी क्योंकि वो बहुत बारीक है, ठीक है ना, वर्क, लेकिन माइक्रोस्कोप लगा के शायद आप तीसरा रुख भी देख लें, अदरवाइज आप नॉर्मली नहीं देख सकते। लेकिन इवन उस चीज का भी दो डायमेंशंस हैं, ठीक है, लेकिन सफा पूरी दुनिया हमारी सफात के ऊपर तो मुश्तमिल नहीं है ना। आप जो है वो किताब उठा लें, या आपके सामने फोन है, ठीक है, या आपके सामने आपका कंप्यूटर है, तो इस कंप्यूटर के तो थिकनेस भी है ना इसके अंदर, ये तो मोटा भी है ना। ठीक है, तो अब ये थिक चीज जो होती है तो इस थिक चीज के तो फिर 2 से भी ज्यादा डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो जब तक आप 3 डायमेंशन ना देखें तो उस वक्त तक आप इस चीज को पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। अगर आप खाली एक डायमेंशन देखेंगे तो ये तो भाई यक रुख ही आपने देखा ना, आपको बाकी 2 डायमेंशन तो नजर नहीं आ रही है इसकी। ठीक है, तो क्या आप फुल पिक्चर जो है वो सिर्फ एक डायमेंशन को देख करके समझ लेंगे कि आपके किताब के बाकी जो साइड्स हैं वो कैसी लगती हैं, क्या एक तरफ को देख करके आप बाकी 2 साइड्स को भी समझ लेंगे? नहीं, हम नहीं कर सकते ये वाला काम, हमें बाकी 2 साइड्स भी देखनी पड़ेंगी। क्या ख्याल है, गलत कह रहा हूं? समझ में आ रहे? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, तो दूसरी जो 2 साइड्स है वो भी तो देखनी पड़ेंगे ना। ठीक है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो फिजिकल चीजें होती हैं वो 3 डायमेंशंस के ऊपर होती हैं, 3 डायमेंशंस। ठीक है, फिर उसके बाद आप मजीद अगर गहराई में जाएं चीजों की तो पता चलेगा कि भाई 3 डायमेंशंस तो खाली मादी चीजों की होती हैं। ठीक है, अगर आप मादे से थोड़ा सा आगे चले जाएं तो 4थी डायमेंशन भी होती है, 5वीं डायमेंशन भी होती है, हत्ता के जो बहुत ही ज्यादा तहकीक से किस्म के लोग हैं उन्होंने तो पता नहीं 10-12 डायमेंशन जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, 10-12 वो लाइट रोशनी के मुख्तलिफ जो है वो स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उसके हिसाब से और भी डायमेंशन होती हैं, बड़ी बहुत लंबी चौड़ी तफसील है इसके अंदर। बहरहाल उस तफसील में जाने की हमें जरूरत भी नहीं है, हम सिर्फ 3 ही डायमेंशंस की बात कर लेते हैं जो कि आम मादे की होती हैं। ठीक है, तो भाई उसी तरीके से ये जो सुन्नत वाला मामला है तो इसकी भी तो एक डायमेंशन तो नहीं होती है ना कि बस आप जो है वो यानी एक से लेकर 3 बजे का वक्त जो है वो तलूले का वक्त है भाई। अगर आप सो करके उठ रहे हैं 11 बजे, अगर आप 11 बजे सो के उठ रहे हैं या 10 बजे भी सो के उठ रहे हैं, 9 बजे भी सो के उठ रहे हैं, सुबह से आप सो रहे थे तो 9 बजे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो फिर आपका जो तलूले का वक्त है वो 1 से 3 बजे का तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको दूसरी डायमेंशन को भी तो देखना पड़ेगा ना कि नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है वो क्या सिर्फ 1 से लेके 3 बजे तक का कैलूला है, बस यही सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की? वॉट अबाउट फजर के बाद जागे रहना, वो सुन्नत किधर गई? ठीक है, तो फजर के बाद क्या नबी अलैहिस्सलाम सो जाते थे? वो सुन्नत किधर चली गई? वो आप तो नहीं सोते थे, बल्कि कोई भी नहीं सोता था, तो उसके बाद तो वो काम किया करते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो खाली क्या फजर के बाद जागना यही सुन्नत है? नहीं, ये भी मुकम्मल सुन्नत नहीं है, बल्कि तीसरी डायमेंशन की क्या है कि रात को जल्दी सोते भी थे, ठीक है ना। उस जमाने के सारे लोग जो हैं वो रात को जल्दी सोते भी थे। तो अब ये जो कम से कम आपने सोने की जो 3 डायमेंशन अगर देखी, कभी दोपहर का कैलूला और रात को जल्दी सोना और सुबह को फिर जागे रहना मुस्तकिल, तब ये पूरी पिक्चर मुकम्मल होगी ना। अब ये पिक्चर जो है वो हम एक तरफ तो देखते रहे खाली, तहज्जुद पढ़ना तहज्जुद पढ़ना तहज्जुद पढ़ना, और बाकी 2 डायमेंशंस को आप इनकार कर दें देखने से, तो ये जो लंगड़ी लूली और टूटी फूटी सी ये पिक्चर है, इससे आपको सुन्नत नसीब हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, इससे आपको सुन्नत कैसे नसीब हो सकती है? ठीक है, हमारा यही मुसीबत है। ठीक है, हमारी मुसीबत यही है कि हम जो है ना वो फुल पिक्चर को देखने ही नहीं चाहते, हम अधूरी को देखना चाहते हैं और उसी के ऊपर खुश रहना चाहते हैं। ये धोखा है, ठीक है, ये सरासर धोखा है। और चूंकि आप उम्मीद है कि सुनी होगी आपने चंद दिन पहले ये वाली बात कि जब किसी को कोई चीज पसंद होती है तो अल्लाह ताला उसके साथ यही मामला कर भी देते हैं। अब हमें धोखा पसंद है, दूसरों को देना तो पसंद है ही, अपने आप को भी देना पसंद है, तो अल्लाह ताला ने फिर हमें धोखे वाले दौर के अंदर, ठीक है, और धोखा मजीद बढ़ता चला जा रहा है, हत्ता के दज्जाल का धोखा सबसे बड़ा धोखा आएगा। तो भाई ये धोखेबाजी के जो तमाशे हैं ना, इनको खत्म करना पड़ेगा हमें, धोखेबाजी के तमाशे, अपने आप को धोखा देना और दूसरों को धोखा देना। ठीक है, तो हजरत यहाँ पे ये फर्म नहीं फरमा रहे, अब हमारा काम है, अब हजरत हजरत एक सफ़े के अंदर सारी तफसील तो नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो हम हजरत को कसूरवार नहीं ठहराएंगे कि नहीं हजरत ने हमें खाली एक पिक्चर दी है, वन साइड ऑफ द स्टोरी सुना रहे हैं, नहीं, बाकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो अपनी अकल भी तो कुछ इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक सफ़े से एक पेज नहीं पूरा का पूरा आपको दीन समझ में आ रहा था ना। अल्लाह ताला ने अकल शरीफ दी है तो उसके जरिए से पर दीन के बाकी हिस्सों को भी तो याद रखना होगा ना, क्योंकि आपने पढ़ी है, बाकी चीजें भी तो पढ़ाई गई है, समझाई गई है, और सामने रोज़े रोशन की तरह आया भी है। कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है ना, तो कॉमन सेंस को भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ये तो नहीं कि एक कागज पे एक लिखा हुआ था तो बस वही है, तो कॉमन सेंस किधर गया आपका? ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होता, 2 से 4 बजे जो है ना वो सोने का टाइम, तो उसके भी फिर दूसरी इम्प्लीकेशन भी तो होती हैं। तो यानी फिक्स करना है ना, तो पूरी चीज को फिक्स करें, और अगर फिक्स नहीं कर सकते तो जो अनफिक्स चीज है उसको अनफिक्स्ड ही समझें, उसको फिक्स्ड ना समझें, जो गलत है उसको गलत ही समझें, उसको सही ना समझें। ठीक है, तो सुबह को फजर के बाद जागे ना जरा, फिर देखिएगा कि आपकी जो बैटरी है ना वो दोपहर 1 बजे कैसी डाउन होती है, ठीक है ना, फिर आप नहीं जाग सकेंगे 1 बजे के बाद। अगर आप फजर से जागी हुई होंगी ना, तो फिर 1 से लेके 3 बजे का टाइम जो है ना वो आपके फिर फ्यूल खुद ही खत्म होना शुरू हो जाएगा, और उस वक्त फिर जो है ना वो अगर जब आपको जगाएंगी तो फिर दूसरे मसले क्रिएट होंगे। लेकिन अगर बदन के जो तकाजा है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो फिर उस वक्त नैप लेनी पड़ेगी, बिकॉज उस वक्त आपके बॉडी जो है ना वो फिर स्लीप मोड में जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए फजर के बाद जागा भी तो रहना होगा ना भाई। तो फरमाया कि चुनाचे जो लोग रातों को इबादत करते हैं उनको चाहिए कि वो रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, मगर 2 से लेकर 4 बजे तक दोबारा सोएं। तो सुनना तो यही है कि भाई जल्दी रात को उठें और इसमें इबादत करें, 2 से लेकर 4 बजे तक दोबारा सो जाएं। ठीक है, क्योंकि सुन्नत क्या थी वो आगे फरमा रहे हैं कि सुभान अल्लाह, मोहसिन इंसानियत की ये आदत मुबारक थी कि तहज्जुद बैनन नौमैन पढ़ा करते थे। तहज्जुद बैनन नौमैन यानी दो नींदों के दरमियान तहज्जुद पढ़ा करते थे। क्या मतलब? पहली नींद क्या होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद सोते थे, फिर उठकर इबादत फरमाते थे। ठीक है, यानी ये जो 2 बजे से का जो टाइम है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी तो डिपेंड करता है ना भाई। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे? ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो मक्का मुकर्रमा में शुरू में रहते थे, जब तहज्जुद जो है वो सारे मुसलमानों पे फर्ज थी, या नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तो फर्ज थी और सारे मुसलमान भी जो है वो तहज्जुद तकरीबन फर्जी थी उनके लिए। ठीक है, और फिर मदीना मुनव्वरा वहां से मूव हो गए, तो मदीना मुनव्वरा जो है वो भी यानी आपके दुनिया के अंदर किस जगह प्लेस्ड है? जीपीएस लोकेशंस, पता है जीपीएस लोकेशंस क्या होती हैं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, कि वो आजकल ये साइंसदानों ने उसके नंबरिंग नंबर बना दिए हैं। तो वो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखें तो इन जगहों का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना वो 24 डिग्रीज बनता है, 24 डिग्रीज लैटिट्यूड बनता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाते जाए नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये लैटिट्यूड जो है वो बढ़ता रहता है, ये 32 हो जाता है, फिर ये 40 हो जाता है, फिर 42 हो जाता है, फिर 47 हो जाता है, फिर उसके बाद नॉर्थ पोल पे जाकर के और भी पता नहीं कितना हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये कि आप जिस जगह रहते हैं वहां के हिसाब से औकात बदलते रहते हैं, ठीक है ना? आप ऊपर जाते हैं तो मगरब का टाइम जो है ना वो डिफरेंट होता है, नीचे आप होते हैं लैटिट्यूड के अंदर तो मगरब का टाइम डिफरेंट होता है, फजर का टाइम भी उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आप अर्थ में किस जगह पे रहते हैं उसके ऊपर भी टाइमिंग्स डिपेंड करती है, और फिर दूसरी चीज ये कि जो मौसम होता है, गर्मियों का मौसम इसके अंदर अलग टाइमिंग्स होती हैं और सर्दियों के मौसम में अलग टाइमिंग्स होती हैं। ठीक है, तो सर्दियों के मौसम में पता है ना कि भाई दिन कितना छोटा होता है और रात लंबी होती है, ये तो हर जगह ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, लैटिट्यूड आपका जो है वो बढ़ता चला जाए, तो वहां पर दिन और छोटा होना शुरू हो जाता है और रात और लंबी शुरू होनी शुरू हो जाती है सर्दियों के मौसम में। और समर के अंदर उल्टा मामला होता है कि दिन जो है वो और लंबा होता चला जाता है और रात जो है वो और छोटी होती चली जाती है समर के मौसम में। ठीक है, और लैटिट्यूड ऊपर जाने से ये और भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये सारे फैक्टर्स हैं ना जो कि इंसान के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, किस जगह पे वो रहता है और किस मौसम के अंदर वो इस वक्त है, ये सारी चीजें जो होती हैं इंसान के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सुन्नत क्या बनी कि भाई इशा के बाद सोते थे, यानी इशा फर्ज है। अब ये नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से जो फराइज है ना तो वो तब्दील नहीं हो सकते। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि जी आप जो है वो लैटिट्यूड आपका ऊपर जा रहा है तो आपने कहा जी अब इशा की नमाज अब फर्ज नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, जैसे भी है इशा तो पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लेट इशा है तो इशा तो पढ़नी है, फर्जियत चेंज नहीं हो सकती। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ठीक है, हज्जतुल विदा के दिन जो है ना ये दीन मुकम्मल हो गया। अब अगर आप चाहें कि मैं ग्रीनलैंड में जाकर के रहूं तो मैं इशा के बगैर नेक मुसलमान बन जाऊंगी, नहीं, इशा तो आपको ग्रीनलैंड में भी जाकर रहनी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो और फजर भी पढ़नी होगी कि भाई वो नहीं, वो फजर नहीं हो रही भाई, जिस तरह से भी पढ़नी है अंदाजे से पढ़नी है, चाहे वो वहां पर रात नहीं हो रही है फिर भी आपको फजर पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, अब जैसे भी पढ़नी है। ठीक है, पढ़नी तो है, 5 नमाजों को आप 4 नमाजें नहीं बना सकते या 3 नमाजें नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब फर्जियत तो है, ठीक है। तो इशा के बाद सोते थे, फिर उठकर इबादत फरमाते, नबी अलैहिस्सलाम के भी सुन्नत में वापस आ रहे हो, किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद सोते थे, फिर उठकर इबादत फरमाते थे, ठीक है, और इबादत के बाद फिर थोड़ी देर के लिए सोया करते थे, ठीक है, और फिर उठा करते थे फजर के लिए। तो फजर की नमाज जो है ना, वो फिर इस दूसरी नींद के बाद पढ़ा करते थे, और तहज्जुद जो है वो दो नींदों के दरमियान, इशा के बाद वाली पहली नींद और फिर तहज्जुद के बाद वाली दूसरी नींद। तो ये जो 2 से 4 बजे का वक्त है, ये गोया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि इंसान के जिस्म को अल्लाह ताला ने इस तरह का प्रोग्राम दिया हुआ है। चुनाचे एक जगह 23,000 लोगों पर रिसर्च की गई, तो उसने ये साबित किया कि जो लोग दिन में पावर नैप ले लेते हैं यानी कैलूला कर लेते हैं, उनकी जिंदगियों में 37% हार्ट अटैक का रेट कम हो जाता है, ठीक है। यानी ये तो एक हार्ट अटैक की तरफ पता चलेगा यहाँ पर, लेकिन दिन में जो कैलूला लेना होता है ना, तो वो इंसान की बॉडी की जरूरत होती है, और जब जाहिर आप बॉडी को उसकी जरूरत वाली चीज नहीं दे रहे होते हैं, तो फिर बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट फिर किस तरह से जाहिर होता है? हार्ट अटैक के जरिए से जाहिर होता है या किसी और बीमारी के जरिए से जाहिर होता है? यहाँ पर तो सिर्फ एक बीमारी का जिक्र है, सिर्फ एक हेल्थ कंडीशन का जिक्र है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है और कुछ नहीं होता। जिसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, इसका मतलब है वो बिल्कुल सेहतमंद है। जिसको हार्ट अटैक हुआ वही बीमार है, और जिसको नहीं हुआ वो बिल्कुल सेहतमंद है। नहीं, बल्कि हार्ट अटैक तो एक जो है वो इम्पैक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। तो वही कैलूला वाला मामला है। अब कैलूला जो है, बात अभी थोड़ी देर पहले हुई, ये कैलूला कैसे करेंगे जब आपकी यानी दिन ही शुरू हो रहा है 11 बजे 10 बजे, तो कैलूला का टाइम कैसे आएगा उस टाइम पर 1 से 3 बजे के दरमियान? तो इनकी जिंदगियों में, अच्छा, इसलिए आजकल डॉक्टर बताते हैं कि जो दिल के मरीज होते हैं उनको चाहिए कि दोपहर के वक्त कैलूला जरूर किया करें, कि इसमें इंसान की सेहत का फायदा है, ठीक है। अब इसके बाद अगला मौजू भी पढ़ते हैं, और साथ साथ कुछ और भी बात भी करनी है, और किसी ने सवाल भी भेजा था तो उसको भी इंशाल्लाह देखते हैं। तो फरमाते हैं कि तहज्जुद के लिए नींद की कुर्बानी। तो हमने देखा है कि जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उनका जब सीजन आता है तो वो अपनी नींद को कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। यानी नींद की कुर्बानी जो है ना, वो बड़े मकसद के लिए करते हैं कि जी हमें प्रॉफिट ज्यादा बनाना है। तो हमारे यहाँ जो है वो आमतौर पर जैसे कपड़ों की सेल वगैरह जो है वो ईद के दिनों से पहले, रमजान मुबारक के दिन आते हैं, तो रमजान मुबारक के अंदर जो है ना वो हमारी शॉपिंग बढ़ जाती है। इबादतें तो पुराने वक्त के लोगों की बढ़ती थी, ठीक है, लेकिन जो है वो शॉपिंग्स बढ़ जाती हैं क्योंकि आगे ईद का फेस्टिवल आ रहा है, तो वो फिर वो बिजनेसमैन का जो है वो सीजन हो जाते हैं। अभी मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा वाले लोगों के दरमियान जो लव सीजन मशहूर है ना, जिसमें होटलों के रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो सीजन में बढ़ते हैं। तो उनका सीजन भी क्या होता है, वो रमजान मुबारक का महीना, ये सीजन होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो हरमैन शरीफैन के लिए आ रहे होते हैं, और हज का सीजन होता है, हज के अंदर जो है वो सारी दुनिया से लोग जो है वो आ रहे होते हैं सऊदी अरब, तो वो इनके सीजन होते हैं, ठीक है। तो सीजन में फिर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो फिर अपने नींद को कुर्बान कर देते हैं और ज्यादा वक्त है वो काम में लगाते हैं। तो रमजान शरीफ में वो सारा दिन जागते हैं कि सेल होती, और रात को सामान मंगवा कर उसकी सेटिंग में लगे रहते हैं, ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं। अगर पूछे कि भाई क्यों नहीं सोते हैं, तो कहते हैं कि जी सीजन गुजर जाएगा तो हम नींद फिर पूरी कर लेंगे। तो जिस तरह बिजनेसमैन अपने सीजन की वजह से नींद कुर्बान करते हैं, मोमिन की ये पूरी जिंदगी सीजन की मानिंद है, नेकियों का सीजन है, ठीक है। तो अब क्या मोमिन पूरी जिंदगी नहीं सोए, ठीक है, क्योंकि पूरी जिंदगी सीजन सीजन है मोमिन के लिए, यानी पूरी जिंदगी उसने नेकियां कमानी है, ठीक है? तो अब उसको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है ना? बिजनेस मैन के लिए तो आप कह रहे हैं ना कि 1 महीना सीजन होता है या 2 महीना सीजन होता है, तो उसमें नींद प्रवान कर देता है। तो मोमिन के लिए जब 24 घंटे 365 डेज ऑफ अयर सीजन होता है, तो उसको तो 365 डेज ऑफ अयर नहीं सोना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के से पता चलता है कि चंद इबादत की रातें होती थी, तो उनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ज्यादा जागा करते थे, और सहाबा को भी जागने का और अपने घर वालों को भी। तो वो रमजान मुबारक के की रातें हैं, बाकी सारा जिंदगी, सारी जिंदगी बेशक मोमिन के लिए सीजन है, लेकिन उसमें जो है वो अपने आप को बीमार नहीं करना है। पीछे हम हदीसें भी पढ़ चुके हैं कि वो औरत जो थी वो सारी सारी रात जागा करती थी, तो नबी रसूल ने उसको जजर फरमाया, डांटा उसको। और उसी तरीके से जो महातुल मोमिनीन में से जैनब थी, तो उनको भी कभी वो रस्सी लगाई हुई थी, उन्होंने उससे लटक जाया करती थी, लेकिन बिस्तर पे नहीं लेटती थी, तो उनको भी मना फरमाया, ठीक है? तो सब चीजों की तदबीक करके पता चलेगा कि सारा साल नहीं जागना है। तो इसलिए मोमिन अपनी नींद को तहज्जुद के लिए कुर्बान करता है और अपने अल्लाह की खातिर रात को जागता है, ठीक है? तो अल्लाह की खातिर रात को जागता है, लेकिन अल्लाह की खातिर दिन में नहीं जागता, ये कैसा मोमिन हुआ? क्या ख्याल है? अल्लाह की खातिर मोमिन साहब जो हैं वो आजकल रात को तो जागते हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर मोमिन साहब ही या मोमिना साहिबा ही दिन को नहीं जागती, तो ये फिर ये क्या तमाशा है? जवाब दें भाई इसको। यानी दिन में तो वो जाग रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा दिन में जागती हैं, दिन में तो जागती हैं, लेकिन दिन में जो है ना वो किसी और के लिए जागती हैं। या तो पता नहीं किसके लिए जागती, क्या मतलब कि दिन में जो है ना वो झूठ बोल रही है, दिन में जो है वो बेपर्दगी कर रही है, दिन में जो है वो अल्लाह के हुक्मों को गीबत के जरिए से तोड़ रही है, दिन में जो है वो कुफर और काफरी के निजाम को अजीम समझ रही है, और अपने और अपने औलाद की कामयाबी का जरिए समझ रही हैं। ये मोमिना साहिबा है आजकल की ना, ये मोमिना साहिबा हैं जो कि दिन में जो जागती हैं, तो वो अजमत मगरबी तहजीब, राइट, मगरबी तहजीब की अजमत उनके यानी दिल पे भी छाई हुई होती है, उनके हर अमल के ऊपर भी छाई हुई होती है, उनकी जुबान पर भी छाई हुई होती है, उनके दिमाग पर भी छाई हुई होती है, ठीक है? और उसी के मुताबिक वो अपने भी काम कर रही होती हैं और अपनी औलाद के सारे जो है वो तालीम और तरबियत और ये सब कुछ कर रही होती हैं, ठीक है ना? और फिर एकदम से ये मोमिना साहिबा जो है ना, वो रात के वक्त एकदम से अल्लाह वाली बन जाती हैं, और ये अल्लाह की खातिर जागना शुरू हो जाती हैं रात के वक्त। तो ये क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है? तो अभी हमारे पास जो है ना वो आई है, आई नहीं बल्कि आए, ठीक है, जिनकी बेटी डहरिया हो गई, यही स्कूल सिस्टम में जाकर के, और अमेरिकन स्कूल नहीं, ब्रिटिश स्कूल नहीं, ये इसी तरह के जो स्कूल होते हैं, ठीक है, बेटी डहरिया हो गई, माँ को भी मारती है, बाप को भी जो है वो ताने देती है और कहती है कि तुम्हारी जो नमाज है ना, तुम्हारा जिंदगी इसी वजह से खराब है, मुझे बता रहे वो शख्स ही सारी बात, ठीक है ना? मुसलमान, पाकिस्तानी, और इन सब के साथ साथ उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी बीवी तहज्जुद गुजार है, ये भी बताया उसने कि मेरी बीवी तहज्जुद गुजार, और मैं ये एक वाकया नहीं आपको बता रहा, इस तरह के और भी हैं, ठीक है? और इतनी इबादत करती है और इतनी जो है वो अल्लाह ताला से यानी वही अपने जो भी दुआएं मंगवाई उन्होंने इनके हिसाब से, ठीक है? और भी तमाशे, एक से एक, ठीक है। तो ये क्या तमाशा है ना, ये क्या रात की तहज्जुद गुजारी, ये रात की जो है वो अल्लाह वादी, और दिन में अल्लाह किधर चला जाता है, दिन में अल्लाह किधर चला जाता है, ये कौन सा अल्लाह है जो रात को आता है और दिन में नहीं आता। ठीक है, रात को नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें भी मौजूद हैं और अल्लाह ताला के साथ राज और न्याज की भी सारी बातें मौजूद हैं, और तहज्जुद के वक्त जो है वो अल्लाह ताला पहले आसमान पे उतर आता है और हल मिन साइलिन फौती अलह, ये भी निदा आती है, सब कुछ है, लेकिन वही अल्लाह दिन में किधर है, राइट? दिन में किधर है वो अल्लाह, दिन में वो रसूलुल्लाह किधर गए कि जिनकी सुन्नत आपको रात को याद आती है, और दिन में जो है वो आपको रसूलुल्लाह के दुश्मन सारे के सारे याद आ रहे होते हैं, हैं? रसूलुल्लाह के दुश्मन जो है वो आपको रग रग रेशे रेशे के अंदर समाये हुए होते हैं, ठीक है ना भाई? तो ये तमाशे जो है ना, ये वही तमाशे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, जितनी इबादतें करे चले जा रहे हैं ना, उतनी जो है वो मुसीबत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये जो दवा आप कर रहे हैं, मर्ज को मारने की दवा जो कर रहे हैं ना, ये दवा ही खराब है, ये दवा ही एक्सपायर्ड है, ठीक है? तो ये दवा करने से मर्ज बढ़ता है, मर्ज कम नहीं होता, ठीक है? लेकिन फितने दज्जाल, क्या कहना फितने दज्जाल के, लगा हुआ है सबको फितने दज्जाल। तो वो अल्लामा इकबाल मरहूम कहते हुए चले गए थे कि तुझे तहजीब हाजिर ने अता की वो आजादी, इबादतें करने की आजादी है भाई इस तहजीब हाजिर के अंदर, तुझे तहजीब हाजिर ने अता की वो आजादी के जाहिर में तो आजादी बातिन में गिरफ्तारी। ऊपर से तो तू आजाद है, रात को पढ़ उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, लेकिन दिन में तू जो है ना वो गिरफ्तार होता है, ठीक है? बातिन में गिरफ्तारी बल्कि दिन में गिरफ्तारी, रात में आजादी दिन में गिरफ्तारी। तू है मौला यसरब, आप मेरी चारा साजी कर, मेरी दानिश है अफरंगी, मेरा ईमा है जुन्नारी, ठीक है? मेरी अकल को क्या हो गया कि मेरी अकल जो है ना वो अब नबी अलैहिस्सलाम के दीन से नहीं आती, बल्कि वो फरंगी से आती है मेरी अकल की सोचें, ठीक है? और मेरा ईमान यानी मेरा जो दीन ईमान है, तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के ऊपर नहीं है, बल्कि ये जो है ना वो जुन्नारी है, जुन्नारी यानी जो ईसाइयों की जो वो जो पट्टा बांधते हैं ना, तो ये है मेरा ईमान, यानी अजीब व गरीब किस्म की चीज है, कैसे एक्सप्लेन करें इसको। तो ये ऐसे नहीं होता ना भाई, ये मोमिन अपनी नींद को तहज्जुद के लिए कुर्बान करता है भाई, मोमिन होता है तो तहज्जुद के लिए कुर्बान करता है ना। हम तो हमने जिस चीज को ईमान समझा हुआ है, जुन्नारी को हमने ईमान समझा, तहज्जुद के लिए अपनी नींद को कुर्बान करते हैं, तो अपने अल्लाह की खातिर रात को जागता है, तो रात को जिंदगी गुजारता, ठीक है? अपनी नींद को जो है ना वो अल्लाह के लिए और अपने दिन को भी अल्लाह के लिए, ठीक है? वो क्या है, वो कुरान मजीद क्या है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो नहीं होता कि भाई मैं सलात जो है वो तो लिल्लाह रब्बिल आलमीन है, और नुसुकी जो है वो किसी और के लिए है, और महया जो है वो अल्लाह के लिए है, और ममाती जो है वो किसी और के लिए है, भाई ये नहीं होता ना ईमान, ठीक है? तो भाई रात को सो जाना जो है ना ये ज्यादा बेहतर है, और दिन में जो है ना वो अल्लाह के लिए दिन गुजारना, ठीक है? दिन अल्लाह के लिए गुजारना और रात को अल्लाह के लिए सो जाना, ये ज्यादा बेहतर है। बजाय इसके कि दिन जो है वो ताबूत और शैतान के लिए गुजारा जा रहा है और रात को अल्लाह के लिए जो है इबादत की जा रही है, सो कॉल्ड। अल्लाह वालों के तो फिर वाकई अल्लाह वाले होते हैं, हमारे जैसे नहीं। जो वाकई अल्लाह वाले होते हैं ना, तो उनको पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने शेर में डिस्क्राइब किया कि खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पतले पुतले, पतले नहीं पुतले, खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबुवत के ये वारिस हैं, यही है जिल रहमानी। ठीक है, ये पूरी नबुवत के वारिस हैं। ठीक है, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, नफली इबादत के ऊपर। ये नहीं कि सो जाते हैं और फर्ज अदा कर जाते हैं, नहीं, नफली इबादत के ऊपर। यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तेका पे नाज करती है मुसलमान। तो दीन का गम है हमारे अंदर, दीन की फिक्र है हमारे अंदर, अपने दीन की नहीं तो दूसरे की क्या होगी। अपने दीन का कोई फिक्र नहीं कि भाई क्या क्या कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे के दीन की क्या फिक्र करेंगे। ठीक है, हमें तो अंदाजा ही नहीं है कि हम किस किस दौर में रह रहे हैं ना। हम तो इस दौर में रह करके समझते हैं कि हम सहाबा के दौर में रह रहे हैं। ठीक है, हम सहाबा के दौर में भी में रह भी रहे, लेकिन मक्की दौर में रह रहे हैं। ठीक है, मदनी दौर में नहीं रह रहे, हम समझ रहे हैं कि हम मदनी दौर में रह रहे हैं, जबकि इस्लामी रियासत कायम हो चुकी है और जो है वो इस्लाम की जो है ना वो यानी निजाम कायम हो चुका है और एवरीथिंग इज इन प्लेस। अब बस काफिरों को हमने जंग में शिकस्त दे करके जो है ना फिर उसके बाद झंडे गाड़ देने हैं बस। ठीक है, ये मदनी दौर था ना, लेकिन मक्की दौर ऐसा नहीं। मक्की दौर था कि जिसके अंदर यानी कोई निजाम नहीं था। मक्की दौर था जिसके अंदर कोई निजाम नहीं था। मक्की दौर था जिसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। मक्की दौर था जिसके अंदर कोई फौजें नहीं थी, कोई सियासत नहीं थी। ठीक है, और ईमान के ऊपर डायरेक्ट हमले हो रहे होते, डायरेक्ट हमले हो रहे होते, हत्ता के मुशरिकीन जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से कहते थे कि तुम हमारी बात मान करके जो है ना वो अपने दीन को बदल लो, तुम्हारे साथ दोस्ती और यारी कर लेंगे, तुम हमारे खलील बन जाओगे। ये मजाल थी उनकी मक्की दौर के अंदर। क्या आज ये काफिर को ये मजाल नहीं है? काफिर को ये हिम्मत नहीं है इस वक्त कि वो मुसलमान से जो है वो उसके दीन की तब्दीली का मुतालबा करता है, और कितने मुसलमान उसके मुतालबे के ऊपर जो है वो उसके हामी भी, उसके साथ हामी भी भर चुके हैं। ठीक है, और फिर उसने जो है मुसलमानों के साथ दोस्ती करी हुई है, खलील बनाया हुआ है मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान ने अपने दीन को तब्दील करने का उसके साथ अहद कर लिया कि हाँ ठीक है, तैयार है अपने दीन को तब्दील करने के लिए। ठीक, तो ये तो मक्की दौर वाली सिचुएशन बनी ना फिर। तो भाई इस वक्त तो ईमान के लाले पड़े हुए हैं, और ये जो है ना वो हम मतलब क्या वन डायमेंशनल किस्म का कोई दीन बना के रखा हुआ। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्न नार कद अनाअतनी मिन नौम फग़फिर ली, कि ए अल्लाह तू जानता है कि जहन्नुम के खौफ ने मेरी नींद उड़ा दी, मेरी मग़फ़रत फरमा दीजिए। ठीक है, हम गुनाहों से तौबा कर लें दिन के वक्त। ठीक है, दिन के बाद गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह के बंदे बन करके जिंदगी गुजारें, तो इस दुआ की कबूलियत वो हमारे लिए हो चुकी होगी। जहन्नम के खौफ ने मेरी नींद उड़ा दी, आप मेरी मगफरत फरमा दीजिए। राबिया बसरिया, बसरिया अल्लाह की नेक बंदी थी, सारी रात इबादत करती थी। एक दफा जब फजर के बाद इशराक पड़ी तो बैठे बैठे थोड़ी देर ऊंग आ गई, तो दुआ मांगने लगी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ऐनिन ला तशबाउ मिन अन्नौम, के अल्लाह मैं ऐसी आंख से आपकी पनाह मांगती हूँ जो नींद से भरती ही नहीं है। तो ये राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जो थी ना, ये जो जमाने में रहती थी ना, तो उस जमाने में दीन भी महफूज था, यानी जिसको कहते हैं ना आजकल बड़ा हुआ मशहूर है जी, नजरियाती सरहद, नजरियाती सरहद और जो है वो मुल्की सरहद, यानी फिजिकल बाउंड्रीज एंड स्पिरिचुअल बाउंड्रीज। बाउंड्री क्या होती है? जो दुश्मन को दूर रखती है, ठीक है? तो दुश्मन को दूर रखने के लिए आपको बॉर्डर्स चाहिए होते हैं, बॉर्डर्स, ठीक है, सरहद इसको कहते हैं उर्दू में। तो नजरियाती सरहद और मुल्की सरहद, तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जो है ना, वो उस जमाने में रहती थी कि जबकि मुसलमानों की मुल्की सरहदें भी महफूज थी और नजरियाती सरहदें में भी महफूज थी। आज का हाल ये है कि मुल्की सरहदें तो है ही नहीं, दीन इस्लाम की मुल्की सरहदें तो है ही नहीं मुसलमानों की, और नजरियाती सरहदें वो भी खत्म। तो इस वक्त तो दीन की फिक्र, ईमान की फिक्र, ठीक है, और अपने यानी ईमान को समझना कि ईमान क्या चीज होती है और इसको अब अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल करके जाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। हम अपनी औलाद को ईमान दे करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआएं करें, दिन में भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं, रात को भी जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं। ऐ अल्लाह, मैं ऐसी आंख से आपको पना मांगती हूँ, ये नींद से भरती ही नहीं है, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। भाई दिन में जो है ना वो अल्लाह का बंदा बन करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, दिन में अल्लाह का बंदा बन करके जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ठीक है, रात को भी अल्लाह ताला तौफीक इबादत, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिन, ठीक है। तो ये तौबा किए बगैर जो है ना, ये इसकी मिसाल ऐसे ही है, वैसे तो जुम्मे के दरस में भी इरादा था कि ये बात मैं आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन आ गई है कि भाई जब आप पानी में होते हैं ना, पानी में, ठीक है, और डूब रहे होते हैं पानी के अंदर, तो उस वक्त जो है ना वो आपका क्या काम होता है? जब आप पानी में डूब रहे होते, समंदर में है जैसे, नाउज बिल्ला, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, कोई समंदर में गिर गया, ठीक है, तो अब जब आप समंदर में डूब रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या सूझती है, क्या 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 करना होता है वहां उस वक्त? अब आप वहां पे क्या साइट सीइंग शुरू कर देते हैं, या आप वहां पे बैठ करके यानी समंदर में डूबते डूबते जो है वो आप शुगल शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, आप एंजॉय करना शुरू करते या क्या करते हैं आप? सांस रोक कर पूरी कोशिश करते हैं बाहर निकल, उन्होंने जवाब जवाब लिखा कि बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से मैं बाहर निकलूं समंदर में से, ठीक है ना। ये नहीं होता कि समंदर में डूबते डूबते आप कोशिश करते हैं कि मैं अब यहां पे कुछ आमाल कर लूं, कुछ मैं तवानाई बना लूं अपनी, मैं यहाँ पे जो है ना वो खाना पीना कुछ खा लूं तो तब ताकत आ जाएगी मेरे अंदर, तो फिर मैं बाहर भी निकल जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। बल्कि योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बल्कि हकीकत तो यह है कि योर ओनली प्रायोरिटी वो होती है बाहर निकलना, ठीक है ना। बाहर निकलेंगे फिर उसके बाद बाकी चीजें करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी चीजें करेंगे, ठीक है। और बाहर निकलने के लिए आपको सांस रोकने की जरूरत है तो सांस रोकेंगे, और हाथ पैर मारने की जरूरत है तो हाथ पैर भी मारेंगे, ठीक है। कोई आपको रस्सी नजर आएगी ऊपर से, अगर किसी किसी ने कश्ती से रस्सी फेंकी होगी तो रस्सी को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी सारी तवज्जो जो है वो बाहर निकलने के ऊपर होगी, ठीक है? कोई हाथ बढ़ाएगा तो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी, ठीक है? क्योंकि बाहर निकलना इस सबसे पहली चीज, बाहर निकलना है, बाकी बातें बाद में, ठीक है? तो ये जो ईमान है ना, ईमान, ये ऐसे ही मामला है कि ईमान कबूल करके, क्या मतलब कि अल्लाह की बातों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ऊपर पूरा का पूरा एतमाद करना, इसको ईमान कहते हैं, इसको ईमान कहते हैं। किसी को इसके ऊपर एतराज है कि नहीं, इसको ईमान नहीं कहते? किसी को इस पर एतराज है कि नहीं, अल्लाह के रसूल की जो है ना, वो चंद बातों के ऊपर एतमाद कर लेने को ईमान कहते हैं, सबके ऊपर एतमाद करने की जरूरत नहीं है? कोई है ऐसा माई का लाल जो कि बात कह सके? तो अल्लाह के रसूल के पूरे दीन के ऊपर एतमाद करना, इसको ईमान कहते हैं, ठीक है? तो जब तक ईमान नहीं लेकर के आएंगे तो उस वक्त तक जो है ना, वो समंदर में डूबते ही रहेंगे, समंदर में डूबते रहेंगे, ठीक है? और डूबते में फिर हम कहते हैं कि तहज्जुद भी चलो पढ़ लेते हैं साथ साथ, और फलानी चीज भी हम उम्रे भी कराते हैं, दनादन करके उम्रे करके आते हैं, है? और जो है वो हर साल का हम हज भी कर लेते हैं, और हम फलानी भी जो है वो आलिमा भी बन जाते हैं। आलिम, चलो जो आलिमा कोर्स ऑफर हो रहा है वो जल्दी से आलिमा कोर्स भी कर लो भाई, जल्दी से जाकर के। ईमान किधर गया? अल्लाह के रसूल के पूरे दीन के ऊपर एतमाद किधर गया? नहीं, वो तो उसकी तो जरूरत नहीं है, उसकी तो जरूरत नहीं है। एतमाद तो हम करेंगे मगरबी तहजीब के ऊपर, एतमाद तो हम करेंगे उनके वादों के ऊपर, एतमाद तो हम करेंगे उनके तालीम के ऊपर, एतमाद तो हम करेंगे उनके निजाम के ऊपर, ठीक है? तो फिर वही होता है जो कि हो रहा है। सही भाई, ईमान की फिक्र करने का, जो हमारे मशायख बता के चले गए ना दुनिया से, हमने उसको सुनने की, यानी समझने की तो दूर की बात है, हमने उसको सुनने की भी कोशिश नहीं करी है कि वो क्या कह के गए हैं। और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जो अभी भी समझा रहे हैं कि भाई ईमान की फिक्र करो, और ईमान की फिक्र के लिए फराइज और अकायद है, बल्कि अकायद एंड देन फराइज, ठीक है? अकायद में से सबसे पहला अकीदा कि नबी अलैहिस्सलाम के हर बात के ऊपर हमने इनकार नहीं करना कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं, ये सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहे तो उसको समझने की कोशिश बेशक करनी है, लेकिन ये नहीं कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये तो ये सही नहीं है, ये दूसरी चीज ज्यादा सही है, उनका उनका निदान ज्यादा सही है, उनका तरीका ज्यादा सही है, उससे वो उससे फायदा होगा, उससे फायदा होगा, और इससे फायदा नहीं हो सकता। बहरहाल, स्लीप मैनेजमेंट और इबादत शबाना, आगे फरमाते हैं कि स्लीप मैनेजमेंट, नींद का निज़ाम यह है कि इंसान इशा के बाद जल्दी सोए ताकि तहज्जुद पढ़ सके और फजर कदा ना हो। जिस बंदे ने इशा के बाद जल्दी सोने वाली सुन्नत पर भी अमल कर लिया है, भाई ये भी तो हजरत जी कह रहे ना, ये तो नहीं कि मैंने सब बात करी हजरत जी को, मैं नाउजुबिल्ला डिनाई कर रहा हूँ कि ना हजरत जी गलत कह रहे, नहीं हजरत जी यही बात तो कर रहे हैं, जिसको कि आपको साजिश में पौन घंटा बैठ करके दूसरे तरीकों से समझाया बस। तो जिस बंदे ने इशा के बाद जल्दी सोने वाली सुन्नत पर भी अमल कर लिया, जिस बंदे ने तहज्जुद पढ़ने वाली सुन्नत पर भी अमल कर लिया, और जिस बंदे ने फजर की नमाज भी अपने वक्त पर अदा कर ली, हम कह सकते हैं कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी में स्लीप मैनेजमेंट का अमल सीख लिया, ठीक है? फिर बड़ी बड़ी साइंसी तहकीकात की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारी ऐसी जिंदगी बना दे कि हमारी रात की इबादत कभी कजा ना हो। क्या मतलब? कि हमारी दिन की जिंदगी जो है ना, वो भी सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो रात की इबादत कभी कजा ना हो। ये तमाशे खत्म करने पड़ेंगे कि दिन की जिंदगी जो है ना, वो सारी की सारी खिलाफ सुन्नत हो, और रात की जिंदगी जो है वो सुन्नत के मुताबिक बन जाए, ठीक है? ये सेल्फ डिसेप्शन है और कुछ भी नहीं है। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना, ठीक है? लेकिन हमारा काम है दिन को जागना याद है दिल भर में। इस शेर को थोड़ा सा और भी चेंज कर लें, ठीक है ना? शायर साहब अपनी शेर कह गए, हम अपना शेर कहेंगे अपने हालात के हिसाब से, और हमारे हालात के हिसाब से हमारा शेर क्या है, हमारा काम है दिन को जागना याद है दिल भर में। हमारी जाग है महवे ख्याल यार हो जाना, हमारी बेदारी है महवे ख्याल यार हो जाना, उसके बाद जाकर के जो है ना वो हमारा काम है रातों को रोना याद है दिल भर में। ठीक है, तो ऐसी जिंदगी बन जाए, यानी ऐसे दिन भी बन जाए कि तहज्जुद हमारी जिंदगी का एक मामूल बन जाए। अच्छा, बड़े मजे की बात ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी बिल्कुल ही बस अल्लाह रहम करे, ठीक है, तो हमारे हजरत जो है ना वो उनको बहुत तहज्जुद 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 तहज्जुद, ठीक है, उनको तहज्जुद के ऊपर बहुत बोला करते थे, ठीक है। अब वो भी अकल के पैदल क्या बोले उनको, ठीक है, तो वो भी जो है ना वो कह, अच्छा हजरत जी ने हमें तहज्जुद पढ़ने के लिए बोला है, अब वो भी लगे हुए तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करने में, ठीक है, लेकिन तहज्जुद हो रही है या नहीं हो रही है वो तो दूर की बात ना, लेकिन बहुत ही मुश्किल बात है वैसे ही। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हजरत जी ने जो उनको तहज्जुद की इतनी पाबंदी करने की ताकीद करी थी उसका मकसद क्या था, उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि वो अपने दिन की तरतीब को ठीक करें, अपने दिन की तरतीब को ठीक करें, उससे फिर उनकी रात की तरतीब ठीक होगी, क्योंकि उनके दिन की तरतीब बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, लेकिन दिन की तरतीब को ठीक करना ये उनको अपनी अक्ल से सोचना था, और बाकी जो हजरत जी ने उनको दीन का इल्म सिखाया, बयानात के अंदर समझाया, ठीक है, तो वो सब था। अब इट वॉज अप टू देम कि वो अपनी दिन की तरतीब को खुद ठीक करें। क्यों? इसलिए कि दिन की तरतीब वाला मामला उनका ऐसा था कि हजरत जी उनको डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे, दिन की तरतीब ठीक करने के लिए हजरत जी उनको डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे, वजूहात होती हैं उसकी, और बिल्कुल ठीक वजह थी हजरत के पास कि वो दिन की तरतीब को ठीक करने के लिए उनको नहीं बोल सकते थे। रीजंस होती है ना, आपके सोशल मसले होते हैं, उनके साहब के अपने मसले ऐसे थे कि जिसकी वजह से हाजी जी उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, इनडायरेक्टली भी तो कोई बातें समझानी होती है ना। अब आप अपनी अकल, इतनी जो दुनिया में काम, आपकी अकल काम करती है दुनिया के मामलात में, तो दीन के मामलात में भी तो उसको इस्तेमाल करें ना फिर, कि हाजी जी का मकसूद समझने की कोशिश करें, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कि भाई हाजी जी आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहे दिन की तरतीब ठीक करने के लिए, क्योंकि आपके स्पेसिफिक हालात ऐसे हैं कि हजरत जी के मुंह से ऐसा जुमला आ जाना जो है ना फिर आपके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाएगी, आपके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाएगी अगर आपने फिर इनकार कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा ये वाला काम जो आप मुझे करने को कह रहे हैं, ठीक है ना? तो हजरत जी हुज्जत तमाम नहीं करना चाहते थे उनके ऊपर, क्योंकि हुज्जत तमाम करने के बाद फिर मसला बहुत बड़ा हो जाता है। अभी ये सूरह अनाम की आयात के अंदर भी यही हम पढ़ रहे हैं, हुज्जत तमाम हो जाने के बाद कि अगर काफिरों के वो डिमांड्स पूरे कर दिए जाते तो फिर फौरन अजाब आ जाता उनके ऊपर, इसलिए कि हुज्जत तमाम हो जाती, ठीक है ना? तो ये हुज्जत तमाम हो जाना बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इस वजह से हजरत जी उनको अगर डायरेक्टली बोल देते ना दिन की गलतियों के बारे में तो उनके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाती, तो हजरत जी ने उनको दिन की तरतीब ठीक करने के बारे में डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन बाकी तमाम एंगल से उनको बात समझा दी। अब उनको रात की तहज्जुद के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो चीज नफली है, हजरत के बोलने से वो फर्ज नहीं हो जाएगी, ठीक है, तो तहज्जुद के लिए जो बोल रहे थे तो भाई वो इसलिए बोल रहे थे कि भाई तहज्जुद आप पढ़ ही नहीं सकते जब तक आप अपने दिन की तरतीब ठीक ठीक ना करें, ठीक है, तो ये होता है एक तरीका इनडायरेक्टली बात को पहुंचा देने का, और इसमें हमारा हमारे लिए आसानी ही होती है, वरना हमारे ऊपर हो जाता मामला। तो यही फरमा रहे हैं फिर यहां पर, देखें ये बयान ही है ना हजरत का, तो इस बयान के जरिए से बात तो पहुंचा दी हजरत ने कि ऐसी जिंदगी बन जाए कि तहज्जुद हमारी जिंदगी का एक मामूल बन जाए। जो बंदा दुनिया में जागेगा, हदीस पाक में है कि इस बंदे को कब्र में लिटाया जाएगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे, जाओ मेरा बंदा थका मांदा आया है, इसे कह दो नम कनउमतिल उरूस, कि दुल्हन की नींद सो जाए। मुहद्दिसीन ने लिखा है, यूं भी कह सकते थे कि मीठी नींद सो जाए, आराम की नींद सो जाए, दुल्हन का नाम क्यों लिया कि दुल्हन की नींद सो जाए। मुहद्दिसीन ने उसका जवाब ये लिखा कि जब दुल्हन रात को सोती है तो उसको वही जगाता है जो उसका महबूब यानी खाविंद होता है। ये बंदा आज कब्र में सो रहा है, कयामत के दिन जब उसकी आंख खुलेगी तो उसकी नजर उसके परवरदिगार के चेहरे पर पड़ेगी। वुजूह यौम इज़ नावरा इला रब्बिहा नावर, ठीक है, ये कुछ चेहरे जो है ना वो उस दिन खिले हुए होंगे और अपने रब की तरफ देखते होंगे, इला रब्बिहा नाज़िरा। दुल्हन की आंख खुलती है तो खाविंद के चेहरे पर पड़ती है, मोमिन की आंख जब कयामत के दिन खुलेगी तो परवरदिगार के चेहरे पर पड़ेगी, और उस वक्त उसको अल्लाह की ज़ियारत का शर्फ नसीब होगा। कहा जाएगा, या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि दिन अच्छा नहीं लगता मगर तेरी याद के साथ, रात अच्छी नहीं लगती मगर तुझे तुझसे राज़ो न्याज़ के साथ। ठीक है, तो इन लोगों को रात तो अल्लाह ताला के राज़ो न्याज़ के बगैर अच्छी नहीं लगती थी ना, तो इनको दिन भी अच्छा नहीं लगता था, अल्लाह ताला से की तरफ से गफलत के साथ इनको दिन भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इंसान की जिंदगी तो दिन और रात दोनों का मजमुआ होती है ना, खाली रात की थोड़ी होती है इंसान की जिंदगी। ठीक है, तो हमारे दिन अच्छे बन जाएं, बंदगी वाले बन जाएं, तो फिर हमारी रातें भी अल्लाह ताला की रजा वाली ही बन जाएंगी, चाहे हम उसके अंदर सो भी रहे होंगे, ठीक है, फिर भी वो अल्लाह की रजा वाली ही बनेंगी। अच्छा, एक सवाल जो है वो माजरत उसको भी एड्रेस क्लास के अंदर ही करना था, वो करके फिर हम क्लास को खत्म कर देते हैं। किसी ने सवाल भेजा था कि जी, हाउ डू वी मैनेज आवर स्लीप स्केड्यूल्स टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेक अप फॉर तहज्जुद इफ वी लिव इन ए कंट्री दैट हैज वेरी शॉर्ट समर नाइट्स सच एज इन द यूएस, यूएस वेयर द नाइट इज लेस देन 6 आवर्स एंड दस इशा स्टार्ट्स लेट एज वेल। ठीक है, जैसे अमेरिका जैसे मुल्कों में जहाँ पे लैटिट्यूड जो है ना वो ऊपर ही है, सवाए फ्लोरिडा के कुछ इलाके हैं, कीज फ्लोरिडा जो है ना वो है मक्का मुकरमा और रियाज के लैटिट्यूड के ऊपर, बाकी सारा अमेरिका जो है ना वो बहुत ऊपर के लैटिट्यूड के ऊपर है, तो वहां पर ईशा देर से ही होती है समर के अंदर, स्पेश समर के अंदर, विंटर में तो ऐसे नहीं होता लेकिन समर के अंदर, और फजर जो है वो कुछ जगहों पे देर से होती है, कुछ जगहों पे जो है वो उसके हिसाब से लैटिट्यूड के हिसाब से बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब जब ईशाई देर से हो रही है और फजर भी जो है वो जल्दी हो रही है, तो ईशा तो आपने पढ़नी है और फजर भी आपने पढ़नी है, तो फिर आपका जो है वो टोटल स्लीप जो है ना वो तो बहुत ही कम हो, और हमने जो है वो पीछे पढ़ा भी है कि एवरेज हेल्दी स्लीप जो है वो एडल्ट की 7 to 8 आवर्स होती है। ठीक है, एडल्ट मैन एंड वुमेन की 7 to 8 आवर्स होती है, तो इस तरीके से आप ईशा के बाद अगर सो भी जाए तो तहज्जुद के लिए जब उठेंगे तो फिर तो आपकी 6 घंटे से भी ज्यादा स्लीप नहीं हो सकती, बल्कि और ऊपर चले जाएंगे तो ईशा और भी लेट हो जाती है, 11:30 बजे 12 बजे भी ऐसी जगह है नॉर्थ पोल के करीब जहां पे के ईशा हो रही होती है, ठीक है, और फजर और भी जल्दी हो रही होती है, तो फिर क्या करें। ठीक है, तो अब इसका जो जवाब है ना ये इतना आसान जवाब नहीं है, ठीक है, तो जरा है मुश्किल, देना भी मुश्किल था और देना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह के किसी जगह पे अगर आप रहते हैं, ठीक है, तो भाई एक बात जो है ना बहुत ही सादा सी आसान तरीन बात इसके अंदर ये है कि आज के मेडिकल साइंस ने एक बात को समझ लिया है या ऑब्जर्व कर लिया है, वो ये कि उन्होंने अपने तजुर्बात के जरिए से इंसानों के ऊपर तजुर्बे करते हैं ना, तो उसके जरिए से उन्होंने ये बात अखज करी है कि गर्मी के मौसम में इंसान की नींद की जो जरूरत होती है वो घट जाती है, और सर्दी के मौसम में इंसान की नींद की जरूरत, बॉडी की जरूरत जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब हमने ये चीज पढ़ी हमने कहा सुभान अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो इशा की नमाज और फजर की नमाज का जो मामला बनाया, तो वो सर्दी के अंदर इशा की नमाज का टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता और फजर की नमाज का टाइम भी जो है वो बहुत लेट हो जाता है, ठीक है ना, और समर के अंदर जब टाइम कम भी हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी को भी ऐसा बना दिया कि समर में नींद की रिक्वायरमेंट ही कम है। तो एक तो ये बात हो गई जो कि बहुत आसान है हमारे लिए मानना भी, क्योंकि साइंस बोल रही है वाली बात, ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आपको इतनी कम नींद मिल रही है रात के वक्त ना, इशा से लेके तहज्जुद के वक्त में इतनी कम नींद मिल रही है, तो आप इशराक के बाद सो जाया करें, ठीक है, इशराक के बाद सो जाना ये फिर हेल्थ के खिलाफ नहीं है। अगर आपके रात को नींद हो ही नहीं रही है, बिकॉज आप ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां पे इतना कम, यूके वगैरह में भी काफी कम फर्क हो जाता है इशा और फजर के दरमियान, ठीक है, तो भाई इशराक के बाद आप अपनी 2-3 घंटे की नींद जितनी कर सकते हैं उतना आप कर लें, ठीक है, ये एक दूसरा एक बात हो गई कि इशराक के बाद सोना बिल्कुल जायज है, ठीक है, इस वजह से ना, मतलब आप उन जगहों पे रह ही नहीं रहे जहां पे के रात में नींद पूरी हो जाती थी, ठीक है, तो अब ये मजबूरी है आपके लिए, ठीक। अच्छा, वरना अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर जागे ना उसके बाद, और फिर जाके कलूरे के वक्त में सो। अच्छा, तीसरी बात ये कि तहज्जुद जो है ना, जैसे अभी आज की पूरी क्लास के अंदर बात ये बहुत ज्यादा हुई है कि तहज्जुद फर्ज नहीं है, तहज्जुद अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं करी है, ठीक है, फजर फर्ज करी है, तहज्जुद नहीं फर्ज करी है। आपने क्यों बनाया इसको फर्ज, किसने कहा आपको फर्ज बनाने के लिए? तो भाई तहज्जुद फिर डिपेंड करती है ना बाकी दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी, तो दूसरे फैक्टर्स में तो आपको फर्जियत को याद नहीं आती है ना, आपको जो है वो यानी अल्लाह की याद याद आ रही है ना, अल्लाह के निजाम को जो है वो सबसे अजीम निजाम समझना और वाहिद कामयाबी का जरिया समझना, ये सारी चीजें तो हमारे लिए फर्ज का दर्जा ही नहीं रखती, और उल्टा जो नफिल था उसको आपने उठा के फर्ज बना दिया, राइट, सोच की फर्जियत तो हमारे ऊपर से साकित हो चुकी है ना, ठीक है, और नफिल की फर्जियत हमारे ऊपर जो है वो कहां से आ गई है, तो ऐसा नहीं है ना बिल्कुल भी, ठीक है, तो दिन को जो है ना वो अल्लाह की बंदगी में, यानी सोच भी अल्लाह की रजा के लिए बनाए और अमल भी अल्लाह की रजा के लिए बनाए, ये दिन में करें और रात को जो है वो सो जाया करें, फजर में उठ जाया करें, ठीक है, और फजर के बाद इशराक पढ़ के उसके बाद पे सो जाए करें, ठीक है, तो ये भी एक मसला है बहुत बड़ा कि आपने नफिल को उठा के फर्ज बनाया हुआ है कि नहीं जी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरी तहज्जुद कदा हो, चाहे कुछ भी हो मैंने तहज्जुद तो पढ़नी है, तो ये तो फर्जियत हो गई ना भाई, ये तो कहां से लेकर के आ भाई, हालात को देख कर करना होता है ना। अच्छा, उसके बाद फिर एक और मसला कि ये जो हम जा करके रह रहे हैं ना, अमेरिका में कोई रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, कोई जो है वो नॉर्थ पोल के और भी ज्यादा करीब रह रहा है, कोई स्वीडन में रह रहा है, कोई नॉर्वे में रह रहा है, कोई जो है वो फिनलैंड में रह रहा है, ठीक है, तो भाई ये तो अब आज के हालात के अंदर हम उधर ऐसी जगहों पर जाके रह रहे हैं, वरना क्यों रह रहे हैं वहां जा करके भाई, ठीक है आप रह रहे हैं, आपके वालदैन वहां पे मूव हो गए थे या जो भी मजबूरियां बन गई, तो भाई जब मजबूरियां बन चुकी हैं तो अब थिंग्स विल हैव टू बी accommodate according to that, ठीक है ना, ये बहुत मुश्किल है इस बात को समझना, मैं खुद भी समझता हूँ इस बात को कि ये बात समझना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, कि जो एक नॉर्मल अल्लाह ताला ने रिहाइश, इंसानियत की रिहाइश के लिए जो ऑप्टिमल जगह बनाई थी ना, वो ये नहीं है, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने कुछ जगह जो है ना वो सिर्फ जानवरों के लिए बनाई थी, अल्लाह ताला ने कुछ जगह जो है वो सिर्फ दरख्तों के लिए बनाई थी, अब हमें एक बात तो क्योंकि वो वेस्ट कहता है तो इस वजह से हमें बात अच्छी समझ में आ जाती है डिफॉरेस्टाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है ना, जहां जहां जंगलात थे लोग, इंसानियत ने जंगलात को काट दिया, तो जंगलात को काट करके क्या किया, वहां पे अपने घर बना दिए। तो इससे जो है वो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हुए ना, वो गलत काम हुआ ना, कि जहां पे जंगलात होने चाहिए थे वहां पे जो है आपने इंसानी आबादियां बसा ली, ठीक है। और ये जो आपके जो वाइल्ड लाइफ थी ये कितनी एक्सटिंक्ट हो गई, कि जहां पे उनको रहने के लिए अल्लाह ताला ने उनका जगह बनाई थी, आपने वहां पे अपनी बस्तियां बनानी शुरू कर दी, अब वहां की जो वाइल्ड लाइफ थी वो एक्सटिंक्ट हो गई है, मार मार करके, पकड़ पकड़ करके उनको जो है वो आपने एक्सटिंक्ट कर दिया। तो ये सब जो है ना वो, ये यानी ये सही चीजें नहीं थी। अब हम उसको एक एक एंगल से तो गलत कहते हैं, जब काफिर कहता है डिफॉरेस्टाइजेशन जो है वो गलत, डिफॉरेस्टेशन गलत काम था, हम कहते हैं हाँ बिल्कुल गलत था। क्यों? इसलिए कि मगरिब से आई ये वाली बात ना, हम कहते हैं जी एनिमल्स को जो है वो आपने एक्सटेंड कर दिया, ये गलत बात थी क्योंकि मगरिब से आई है, हाँ बिल्कुल गलत बात थी, ठीक है गलत बात थी। लेकिन जो उन्होंने अपनी ये जो आबादियां बनाई हैं और फिर उन आबादियों में वो खुद भी रहे, भाई वो तो काफिर थे, वो तो अल्लाह के निजाम से वैसे ही खिलाफ, उनको तो पता ही नहीं अल्लाह के निजाम है क्या, ठीक है। और हम भी उनके पीछे पीछे उन्हीं की बस्तियों में जाकर के जब रह रहे हैं, तो भाई वो तो अल्लाह के निजाम के मुताबिक नहीं बनी हुई बस्तियां हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब जब फ्रॉम द गेट गो अल्लाह के बनाए हुए निजाम के खिलाफ चीजें करी हैं, तो फिर अब ये तहज्जुद शहज्जुद वाले चक्कर किधर किधर, फिर वो करो तहज्जुद भी पढ़ रहे हो और सेहत भी बिल्कुल ठीक रहे, नहीं ये तो फिर ठीक नहीं रहेगा ना भैया, या तो आप तहज्जुद पढ़ लें या आप अपनी सेहत ठीक कर लें, ठीक है। तो ये भी है, ज़हर अल फसादु फिल बर्रे वल बहर बिमा कसबत अईदी नास, या बिमा कसबत अईदी आयत। तो यानी खुश्की और तरी के अंदर जो है ना वो फसाद मचाया है इंसानों की अपनी हाथ की कमाई से, ठीक है। तो वो कौन सा वाला फसाद है, ये तो 1400 साल पहले ये वाली आयत नाजिल हुई थी, ठीक है। तो उस जमाने में तो फैक्ट्रीज भी नहीं होती थी, उस जमाने में तो जो है वो ऑटोमेशन भी नहीं हुई थी, उस जमाने में तो जो है वो मोटर कार भी इजाद नहीं हुई थी, ठीक है। तो वो फिर कौन से वाले फसाद की बात कर रहे थे, 1400 साल पहले जो आयत नाजिल हुई है। तो ये फसाद जो है ना वो अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ निजाम था उसके खिलाफ ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर इंसान फैले कि जिससे के जो अल्लाह ताला की बाकी मखलूक थी उसको भी तकलीफ हुई है और इंसान को भी तकलीफ हुई है, इंसान को भी तकलीफ हुई है, ठीक है। ऐसे इलाकों में रहने की वजह से जहां पर के इतनी लंबी या तो रात चल रही है या इतना लंबा जो है वो दिन चल रहा है, ठीक है। तो जो जो कोर एरिया है ना, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना सब छोड़ छाड़ करके जो है वो इधर मूव, ये हम नहीं कह रहे भाई, आप तो आप कर ही नहीं सकते ना ये वाला काम, छोड़ छाड़ करके आप जो है सारे के सारे मिडिल ईस्ट में मूव हो जाएं या हिंद में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में और नॉर्थ अफ्रीका में मूव हो जाएं, नहीं हम ये कोई कर ही नहीं सकता, हमें कहने की क्या जरूरत है ये वाला वाली बात, ठीक है। लेकिन कम अज कम माने दो ना इस बात को यार, कि जिस तरह आप डिफॉरेस्टेशन को बुरा समझते हैं क्योंकि वो किसी वजह से भी आप समझते हैं, ठीक है, तो भाई इस बात को भी समझ लें कि हाँ भाई ये अजीबो गरीब किस्म की जो आपने जगहों पे बस्तियां बनाई हुई हैं ये भी कोई ऑप्टिमल नहीं है। अब इसको आप इनकी स्टडीज पढ़े जाकर के तो आपको पता चलेगा ना कि जी नॉर्थ पोल के ऊपर जो लोग रहते हैं तो उनकी लाइफ के ऊपर क्या क्या फर्क पड़े होते हैं इनकी वजह से, ठीक है। और ये जो सर्केडियन रिदम है और जो है वो मूड्स के मसले हैं और दीगर जो है वो लाइफ के जो यानी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब उसको वो साइंस के जरिए से वो फलानी बत्ती ईजाद कर लो और ब्लू लाइट ईजाद कर लो, तो ब्लू लाइट के अंदर रहेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा जैसे कि सोलर लाइट का इफेक्ट आ रहा है, तो भाई ब्लू लाइट तो अब जाके ईजाद हुई है ना, और वो भी हर बंदे के पास तो अवेलेबल नहीं होती। उन्होंने मिलिट्री कैंप जो बनाए हुए हैं ना नॉर्थ पोल के ऊपर, तो वहां पर वो अपने सोल्जर्स को फिर उनकी सेहत को बहाल करने के लिए फिर वो उन्होंने खास किस्म की एक लाइट इजाद करी है, वो लाइट के अंदर उनको रखते हैं तो फिर उनकी नींद वींद थोड़ी सी जाकर के पूरी होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल सिस्टम तो नहीं है ना, अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, बहरहाल जो सवाल भेजा था जिसने उनको हम बता देंगे कि भाई क्लास के आखिर में इसके ऊपर हमने कुछ बातें करी थी। अल्लाह ताला हमें बात को समझने की भी तौफीक अता फरमाए, हमें अच्छे से समझाने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।